साकेता नगरी च विनीता प्रसिद्धा न युद्धे अरिभिश्च विजेतुं शक्या अयोध्या बहुविराकेतैः तु साकेतपुरी सार्थ नामा विनयशीलै सहिता विनीता पुरीता प्रवंदे। अभ्यात्माओं, अयोध्या नगरी को साकेतपुरी के नाम से भी जानते हैं। साकेत माने जहां पर अच्छे अच्छे आकेत महल थे, सुंदर सुंदर, ऐसी नगरी को साकेतपुरी कहा। युद्धे जेतुम अरिभिश्च न सक्या, जो कभी भी युद्ध में शत्रुओं के द्वारा जीती नहीं जा सकी, ऐसी नगरी का नाम अयोध्या है। और विनीतापुरी अर्थात जहाँ विनयशील लोग हमेशा रहे हैं, ऐसी उस नगरी का एक नाम विनीतापुरी भी था। इन समस्त नामों से समन्वित अयोध्या, साकेतपुरी, विनीता, इन तमाम नामों से प्रसिद्ध कौशल देश की अयोध्या नगरी को बारंबार नमन करते हुए यहाँ चार चार कल्याणक को प्राप्त करने वाले अनंतानंत तीर्थंकरों को नमन करके आपको ले चलती हूँ। भरत का भारत नाम के एक उपन्यास साहित्य पर भरत चक्रवर्ती का प्रकरण है, जिसमें आपने जान लिया कि सम्राट चक्रवर्ती भरत ने किस प्रकार 60,000 वर्ष तक 6 घंटों पर विजय करके चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया और वे हमेशा अपनी आत्मा की ओर ध्यान करते हुए भेद विज्ञान से समन्वित होकर जलते भिन्न कमल हैं और भरत जी घर में वैरागी का संदेश देने वाले अपने आप में एक महान इस युग के प्रथम चक्रवर्ती राजा हुए। वहां से हमने आपको बनारस ले चलकर और दूसरे दृश्य से अवगत कराया था कि बनारस के राजा थे अकंपन, और उन्होंने एक दिन अपनी पुत्री को उपवास करके खूब मंडल विधान पूजा आदि करके जब वो राजसभा में आकर पिता को से साक्षत समर्पित करती है, मस्तक पर चढ़ाने के लिए शेषाक्षत का बड़ा महत्व होता है। राजा अकंपन ने पुत्री के हाथ से शेषाक्षत लेकर बड़ी श्रद्धा के साथ अपने मस्तक पर लगाया। पुत्री भी अपने पिता के मस्तक को शेषाक्षत से पवित्र करती है और पिता ने उस थाली से शेषाक्षत लेकर अपने मस्तक को पवित्र किया और पुत्री को युवती देखकर उन्होंने युग का प्रथम स्वयंवर रचाया, जो एक चित्रांगद नाम के देव के द्वारा बनारस नगरी में स्वयंवर मंडप रचा गया था। देश देश से तमाम राजकुमार आए थे एक राजकुमारी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए। कितना सोचो तो सही कि कन्याओं का कितना बड़ा मोल हुआ करता था, कितना मूल्यांकन था एक राजकुमारी को पाने के लिए। अनेक राजकुमार आकर के प्रतीक्षा करते थे कि मैं किस प्रकार से इसकी शर्तों पर खरा उतर करके और इसकी पसंद बन जाऊं और ये मेरे गले में वरमाला डाल दे। तो सुलोचना ने भरत चक्रवर्ती के सेनापति जय कुमार के गले में वरमाला डाली और वह यह आदि युग का प्रथम स्वयंवर था। जैसे ही जय कुमार के गले में वरमाला पड़ी तो इधर भरत चक्रवर्ती के पुत्र अर्क कीर्ति भी उस स्वयंवर में शामिल हुए थे। उनके गले में वरमाला नहीं पड़ी तो वो एकदम राजा अकंपन पर क्रोधित हो गए और इसे उन्होंने अपना अपमान समझ लिया और वे युद्ध करने चल पड़े। उस समय का वर्णन है कि बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। स्त्री के लिए ये पहला युद्ध था। बहुत बड़ी सेना के साथ जय कुमार न चाहते हुए भी अर्क कीर्ति के साथ युद्ध करते हैं और सब लोग घबराहट में होते हैं। उस समय जयकुमार के मुख से अपने पिता ससुर के सामने अकंपन के सामने निकलता है, माम आप चिंता न करें, आप सुलोचना को संभालिए, उसकी रक्षा करती है करिए, मैं अभी अर्क कीर्ति को कृष्ण कीर्ति कर देता हूं। अर्थात स्वर्ण के सूर्य के समान जिसकी कीर्ति फैल रही है उसकी कीर्ति को मैं काली कर दूंगा। जय कुमार को अपने बल पर अपने बाहुओं पर विश्वास था और अनेक लोगों के साथ में उसने युद्ध किया और आखिर क्या होता है कि जय कुमार ने अर्क कीर्ति को जीवित ही पकड़ लिया और अपने रथ में डालकर स्वयं एक हाथी पर आरूढ़ होकर के शिव के समान पराक्रमी जय कुमार राजा अकंपन के पास आ गए। अर्क कीर्ति को जीतने का बहुत बड़ा कोई आनंद नहीं था बल्कि राजा अकंपन उसे दुखी हुए और सोचते हैं कि देखो पाप कर्म का उदय आता है तो कैसा होता है, कहां तो ये चक्रवर्ती भरत का पुत्र बड़ा भारी युवराज, भारी सेना का समूह जिसके पास है तो भी उसकी दशा हुई है, इसलिए कहना पड़ता है कि अन्याय जो है पुरुष को ऐसा तिरस्कार प्राप्त करा देता है। अगर कोई अन्यायी बन करके और कैसी भी प्रार्थनाएं भी कर ले लेकिन सच्चाई पर नहीं है तो उसका अपमान होता है, तिरस्कार होता है और उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती है। तो आगे फिर क्या होता है कि युद्ध के शांत होने पर सुलोचना जो मंदिर में बैठ करके ध्यान कर रही थी, उपवास कर रही थी कि अगर इस उपसर्ग से निकल गए हम तब तो अन्न जल ग्रहण करेंगी वरना अन्न जल का त्याग, क्योंकि महासती थी और उसने एक पति का वरण कर लिया था। सोच रही थी मेरे पति की अगर रक्षा हो गई तभी तो मेरी रक्षा है वरना मेरा जीना इस संसार में बेकार है। आखिर इस युद्ध में जब विजय होती है और अर्क कीर्ति दुखी होता है तब राजा अकंपन कहते हैं, हे कुमार आप हमारे नाथ वंश और सोमवंश दोनों ही तो आपके द्वारा बनाए गए हैं और दोनों ही आपके द्वारा बढ़ रहे हैं, आप कष्ट में ना रहिए, चाहे कुछ भी हुआ है लेकिन हम आपको दुखी नहीं देख सकते। अब मेरे दिमाग में एक बात आई है कि मेरी एक पुत्री है अक्षमाला, उसके साथ मैं आपका विवाह करता हूँ, आप कृपया उसे स्वीकार किए कीजिए और चक्रवर्ती के राजवंश में मेरी कन्या जाएगी, मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। ऐसे कर करके अर्क कीर्ति को समझाया और अपनी पुत्री के साथ उसका विवाह कर दिया और उसके बाद बड़े वैभव के साथ कुछ दिन तक सुलोचना और जय कुमार को अपने बनारस में ही रखकर उनके साथ राजकाज करके और उसके बाद दोनों ही पुत्रियों को डोली में बिठा करके एक को अयोध्या की ओर और एक को हस्तिनापुर की ओर, क्योंकि जय कुमार सेनापति राजा सोमप्रभ के पुत्र थे, वह हस्तिनापुर के युवराज थे और अर्क कीर्ति राजा भरत के पुत्र थे, वे अयोध्या के युवराज थे। तो दोनों डोलियों को अक्षमाला की डोली अयोध्या की ओर भेजी और सुलोचना की डोली हस्तिनापुर की ओर। अब एक वर्णन आता है किनाथ वंश के शिरोमणि राजा अकंपन आपकी कीर्ति के अपमान से दुखी थे और वे सोचते थे कि सम्राट भरत चक्रवर्ती जिनके साथ सेना में मैंने युद्ध करके उन्हें तमाम प्रसन्न रखा, वे क्या सोचते होंगे कि हमने उनके पुत्र का अपमान किया है। तो एक सुमुख नाम के अपने दूत को एक चिट्ठी लिख करके जय कुमार से सलाह किया उन्होंने और एक चिट्ठी लिख करके उन्होंने सम्राट चक्रवर्ती भरत के पास भेजा कि इस प्रकार से हे नाथ आप क्षमा कीजिए, जो दंड चाहे मुझे दे दीजिए, क्योंकि दंड की व्यवस्था तो आप ही ने इस धरती पर बनाया है, मुझे जो चाहे दंड दीजिए। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि मैंने अर्क कीर्ति के साथ में जो भी कुछ किया है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और तमाम तरह से उन्होंने दूत से कह करके और पत्र के माध्यम से भी क्षमा याचना की। भरत ने दूत को देख करके और उसका सम्मान किया, पत्र के द्वारा जानकारी की और प्रसन्न हुए कि मेरा सेनापति जय कुमार है और उसके ससुर अकंपन राजा इतने भी नहीं है, और मेरे पुत्र अर्क कीर्ति ने जाकर बनारस के अंदर जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। तो बारंबार कह कह करके और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी आपने किया है सब कुछ अच्छा किया है, तो ऐसे करके उस दूत को भी वापिस भेजा और अकंपन राजा के लिए बहुत कुछ भेंट आदि भी भेजा। इससे राजा अकंपन भी संतुष्ट हुए। इसके बाद में क्या होता, व्यवहारिकताएं औपचारिकताएं सब जगह चलती प्रारंभ से ही, भले ही कोई उसका दुरुपयोग करे। दहेज में तमाम चीजें दी राजा अकंपन ने, आज दहेज का वो भूत बन गया है, दहेज लेना और देना जो है अभिशाप बन गया है। लेकिन प्रारंभ काल से भी सब लोग अपनी कन्याओं को अपनी शक्ति के अनुसार देते तो है ही, राजा लोग अपनी शक्ति के अनुसार देते थे। तो ऐसे करके जब दोनों को विदा किया तो उधर से जय कुमार अपने हाथी पर सवार होकर के जब हस्तिनापुर की ओर जाने लगते हैं तो बीच में अयोध्या नगरी आती है, और अयोध्या में उन्होंने उचित समझा कि मैं सम्राट भरत चक्रवर्ती के पास में भी चलूं, क्योंकि मेरे पिता सोमप्रभ को कुरुजांगल देश का राजा तो भगवान ऋषभ देव ने ही बनाया था, और आज हम लोग भरत के अंडर में तो है, ये केंद्र शासित प्रदेश ही तो है हमारा। तो ऐसे करके वो यहाँ पर आते हैं भरत चक्रवर्ती के पास और उनके अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं, उनका खूब अच्छा स्वागत होता है, भरत की राजसभा में जाते हैं। भरत एकदम कहते हैं चिरंजीव रहो जय कुमार, तुम सुलोचना को लेकर के क्यों नहीं आए। अर्थात क्या किया था जय कुमार ने कि गंगा नदी के एक तट पर सुलोचना को और अपनी सारी सेना और तमाम लवाजमे को, एक तरह से समझो जो बारात अब वापिस हस्तिनापुर जा रही थी, वो सब लोग वहां पर सुलोचना की देखरेख में थे और जय कुमार केवल आ गए थे भरत जी से मिलने के लिए। भरत ने कहा तुम सुलोचना को क्यों नहीं आए, तुमने हमें बिना बुलाए सुलोचना के साथ विवाह कर लिया, माने अच्छी अच्छी बातें कह करके जय कुमार को संतुष्ट किया। और जय कुमार भी एकदम नीची दृष्टि करके हाथ जोड़ करके निवेदन करने लग गए कि हे देव आपके आज्ञाकारी नरेश ने प्राचीन स्वयंवर की परंपरा को बनारस में करके उस स्वयंवर प्रथा का प्रारंभ किया और मेरे देव ने मेरी भाग्य ने उसे उल्टा कर दिया और वहां पर युद्ध होने लगा। किसी तरह से युद्ध को मैंने जीता और मेरे द्वारा जो अर्क कीर्ति का अपमान हुआ है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, यानी ये एक औपचारिकता उन्होंने निभाई। अब उसके बाद में वहां से सारे स्वागत को स्वीकार करके जय कुमार अपने नगरी की ओर हस्तिनापुर की ओर चलते हैं। हाथी पर बैठ करके सुलोचना और जय कुमार जी जाते थे, उसी समय की घटना है कि जैसे ही वहां पर एकदम आतुरता के साथ कि मैं अपनी पत्नी सुलोचना को वहां बिठा करके आया हूँ, जल्दी से वो अपने हाथी को गंगा नदी के जल में उतार देते हैं। हाथी उसमें एकदम चलने लगा, दिव्य हाथी था, लेकिन उसमें क्या होता है एक देवी काली देवी वो आती है और गजराज को हाथी के पैर को एकदम दबोच लेती है, हाथी एकदम नीचे होता चला जाता है। तब सुलोचना ने फिर भगवान की आराधना की, मंत्र की आराधना की, और किसी प्रकार से गंगा देवी ने स्वयं प्रकट होकर के और वहां पर आकर के काली देवी को पराजित करके सुलोचना के लक्ष्य को सिद्ध किया और संकट से निकले। और सुलोचना और जय कुमार दोनों सकुशल हस्तिनापुर पहुंचती। अब वो काली देवी कौन थी? तो कहते हैं कि एक बार एक सर्प सर्पणी जब मरे थे तो उसमें से एक एक को जो है इन्होंने राजा अकंपन ने मार दिया था उनके साथियों ने, तब वो मर करके काली देवी हो गई थी। तो बैर का बदला लेने के लिए उनकी पुत्री के पास आती है और जय कुमार को मारना चाहती है कि ये किसी तरह से विधवा हो जाए, लेकिन भगवान की आराधना से बच जाती है। फिर वो देवी कहती है कि सुलोचना जब मैं मर रही थी सांप की पर्याय से, तब तुमने हमें नमोकार मंत्र सुनाया था और नमोकार मंत्र सुनाने से मैं गंगा देवी हो गई जिसने उसे बचाया था। बोली ये आपका ही उपकार है कि मैं गंगा नाम की वेंतर देवी हुई हूँ और आपके उपकार का बदला चुकाने के लिए यहाँ आई हूँ। पारस्परिक बैर और पारस्परिक मित्रता इस तरह से काम आती है। एक ने नमोकार मंत्र सुनाया तो उसने उस जो देवी बन गई उसने आके उपकार किया, एक ने उसको मारा था सांप को तो वो जो है काली देवी होकर के और गजराज को मारना चाहती थी। तो इस प्रकार से उपसर्गों को संकटों को जीतते हुए महापुरुषों का जीवन व्यतीत होता है और वे हस्तिनापुर में आकर के सुलोचना और जय कुमार का जीवन सुखी होता है। राजा सोमप्रभ अपने पुत्र और पुत्रवधु का खूब सम्मान करके और सारी प्रजा के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, सबको किमिच्छक दान बांट करके और पुत्र के विवाहोत्सव की प्रसन्नता, जैसे आज लोग रिसेप्शन करते हैं विवाह के बाद पुत्र और पुत्रवधु को बिठा करके रिसेप्शन करते हैं, ऐसे ही समझो उस समय अयोध्या नगरी में राजा सोमप्रभ ने जय कुमार और सुलोचना का किया होगा बड़ा भारी महोत्सव और ऐसे सुंदर काल निकलता चला जाता है। थोड़ा सा वर्णन जो और भी है भरत चक्रवर्ती से संबंधित कि आगे किस प्रकार से भरत चक्रवर्ती को कैसे भेद विज्ञान प्राप्त होता है, कैसे वे मोक्ष मार्ग में अग्रसर होते हैं, भगवान ऋषभ देव के कल्याणक आदि मना करके तो कथानक रोमांचक कथानक श्रवण करते रहें। और इसके पश्चात हम एक दो दिन में आपके लिए भगवान मुनि सुव्रत का चारित्र लेकर के आएंगे जिनका पंच कल्याणक महोत्सव होने वाला है। ऐसे मुनि सुव्रत भगवान का चारित्र भी आप सब लोग श्रवण कीजिएगा। जब लो मुनि सुव्रत नाथ भगवान की, भरत चक्रवर्ती सिद्ध परमेश्वर भगवान की, उनके 923 पुत्र भगवान की जय।